نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جمعرات کو بعد نماز عشاء تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں. عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں، کتاب کوئی سی بھی ہو. اور یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ سننے والے کو پتہ ہو کہ جو بات سنائی جا رہی ہے اس بات کا کہنے والا قائل متکلم کون ہے. اس لیے کہ کلام میں اور بات میں وزن، یہ متکلم اور قائل کی شخصیت کے اعتبار سے ہی پیدا ہوتا ہے. معمولی آدمی ہے تو اس کی بات بھی معمولی ہوگی، اور غیر معمولی شخصیت ہے، بڑا آدمی ہے تو اس کی بات بھی غیر معمولی ہوگی، بڑی ہوگی. یہ اس وقت جو کتاب کھلی ہوئی ہے، یہ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات اور ارشادات کا ایک مجموعہ ہے جسے تیار کیا ان کے بعض خاص خلفاء حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی ہے. نام حضرت ہی کا تجویز فرمایا ہوا ہے حضرت تھانوی قدس سرہ کا، انفاس عیسیٰ. ارشاد فرمایا کہ تکبر بڑا ہی خناس ہے. تکبر، انسان دوسرے کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، اور اپنے کو عزیز سمجھے، اپنے کو اعلیٰ سمجھے. خاص طور سے اس کی تشریح سمجھنے کے لیے یہاں یہ بھی سمجھ لو کہ اس سے مراد دوسرے کو کمتر، اپنے کو برتر، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ کے یہاں ہمارا مقام بہت اونچا ہے، ہم تو اللہ کے مقرب اور چہیتے ہیں، اب بس جب ہم جائیں گے تو جنت تو ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ایسے ہوں گے اور ویسے ہوں گے. یہ لوگ، ان کی کیا فکر ہے؟ ان کی تو نجات مشکل ہے، مغفرت بھی نہیں ہو پائے گی، ایسے ہیں ویسے ہیں. زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل سے سمجھے اندر. چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہے، یہ ہے کبر اور یہ ہے تکبر، یہ ہے فخر. ایک ہے اپنے کو کسی کمال میں بڑھا ہوا سمجھنا، مختصر لفظوں میں اپنے کو اکمل سمجھنا. اگر شخص یہ سمجھتا ہے، اہل علم ہے، کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ شخص ہے، اس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، تو علم میں اس سے بڑھا ہوا ہوں. مگر یہ بھی سمجھے کہ یہ عطیہ ہے ذات باری تعالیٰ کا، میرا استحقاق نہیں، میرا ذاتی کمال نہیں، ذات باری تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے مجھے دے دیا، اسے نہیں دیا. اس کی وجہ سے اپنے آپ میں عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، جی اسے اپنا استحقاق نہ سمجھے، یہ کبر نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے. اور بندہ یہ بات امت کے حکیم اور ملت کے مجدد کے ارشاد ہی کی روشنی میں کہہ رہا ہے. کسی نے حضرت سے پوچھا تھا، سوال بھی معقول تھا، حضرت یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے برتر سمجھے، آخر ایک عالم اپنے کو جاہل سے کمتر کیسے سمجھے گا؟ ایک باکمال، ایک ناقص انسان کے مقابلے میں اپنے کو کمتر کیسے سمجھے گا؟ اب یہ مجدد الملت ہے. مجدد اگر دین کو، نصوص کو، اور حقائق دین و حقائق شریعہ کو صحیح نہیں سمجھے گا تو اور کیا ہما شما ہم اور آپ سمجھیں گے؟ اس کا تو کام ہی ہے دین کو نکھارنے کا، ہر چیز کو اس یہ بتا دینے کا کہ اس کی حد شرعی یہ ہے، عند الشارع عند اللہ و عند الرسول اس کا مقام یہ ہے، اس کا حق یہ ہے، تلک حدود اللہ. اگر وہ دین کو نہیں سمجھے گا اور حقائق دین کو نہیں سمجھے گا تو اور کون سمجھے گا؟ وہ سمجھتا ہے کیسا سمجھتا ہے؟ کما ہی مطلوبتن فی الدین، کما ہی مطلوبتن عند الشارع، و کما ہی مقصودتن فی الشرع. اسی لیے ایسے شخص کو کبھی حکیم کہتے ہیں، حکمت پڑھا ہوگا، حکمت نفسی تو نہیں پڑھائی جاتی لیکن کہیں حکم و فلسفے کی تعریف میں علم الحکمت علم بأحوالی، آگے دو تعریفیں ہیں، کہ بأحوال الموجودات اعیانا کانت او معقولات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر طاقت البشریہ. اور بعض لوگوں نے تعریف کر دی بأحوال اعیان الموجودات، وہ تو فرق ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں موجودات، یہ موجودات آسمان زمین چاند سورج ستارے جمادات نباتات حیوانات انسان جتنی چیزیں پائی جانے والی ہیں. بعضوں نے عام کیا، چاہے وہ موجودات ذہنی ہوں جن کا وجود ذہن میں ہوتا ہے یا وہ موجودات خارجی، ان کو ویسا جاننا جیسا کہ یہ نفس الامر و خارج میں ہیں، سورج کو اس کے اوصاف و صفات کے ساتھ جاننا اور اس کی حرکت وغیرہ کو اسی طرح جاننا، چاند کو جاننا، سب چیزوں کو جاننا، یہ ہے فلسفہ. یہ تو ہے حکمت تکوینیہ، میں اسے نہیں بتانا چاہتا. هناك حكمة تكوينية وهناك حكمة تشريعية. یہ جو ہمارے ان بڑے بڑے علماء کو حکیم الاسلام کہا جاتا ہے، حکیم الامت کہا جاتا ہے، یہ حکیم الاسلام کس معنی کا؟ حکمت تشریعیہ علم بالحقائق الشرعیہ والمعارف الشرعیہ کما ہی مطلوبت فی نظر الشارعہ کما ہی موجودت فی الشرع. شاہ ولی اللہ صاحب حکیم ہیں اس معنی کا. قاری طیب صاحب قدس روح کو حکیم کہا گیا. حضرت نانوتوی کا اگرچہ لقب نہیں ہے، حجت الاسلام ہے، میں کہ حجت الاسلام تو وہی ہوگا جو حکیم الاسلام ہو. حضرت اقدس تھانوی قدس روح حکیم ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مظاہر ہے کہ مجدد جو ہے وہ حقائق شرع کو ویسا سمجھتا ہے جیسا کہ وہ شریعت میں مطلوب ہیں، نصوص میں موجود ہیں. تو حضرت اقدس تھانوی قدس روح اگر فخر کو نہیں سمجھیں گے اور کبر کو نہیں سمجھیں گے تو کیوں نہیں سمجھیں گے؟ پھر مجدد کیسے ہو جائیں گے؟ تجدید کیسے کر دیں گے؟ پوچھا پوچھنے والے، حضرت یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مکلف کیسے بنایا جا رہا ہے کہ آخر ایک عالم ایک جاہل کے مقابلے میں اپنے کو کمتر سمجھے؟ حضرت سمجھ میں نہیں آتا. میں اس کی حصے مثال دوں، تم لوگوں کو میں اس کا مکلف بنایا جائے، دیکھو اس وقت اگرچہ رات ہے لیکن تم اسے دن سمجھو. ارے یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو من وجہ تکلیف ہے، مالا یوتاخ ہے. اگرچہ یہ دیوار ہے اینٹوں کی مگر تم اسے سونے اور چاندی کی سمجھو، یہ کیسی بات ہے؟ بے تکی بات ہے. کسی نے طالب علمانہ سوال کیا اہل علم میں سے. قربان جائیے امت کے حکیم و ملت کے مجدد کے. ایسی ہی بات تھوڑا ہی ہے، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں آج کل اپنے اکابر علماء دیوبند کو، ویسے ہی کہتے ہیں ہمیں محبت ہے اور ویسے ہی کہتے ہیں کہ بہت بڑے علماء ہیں. پتہ نہیں سنی سنائی علم الیقین بھی نہیں، حق اليقين، عين اليقين اور حق اليقين را چرسد، ایک جملے میں حضرت نے ایسا جواب دیا ہے کہ للہ در. فرمایا ایک ہے اپنے کو افضل سمجھنا اور ایک ہے اپنے کو اکمل سمجھنا. اکمل سمجھنا تو جائز ہے، افضل سمجھنا جائز نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ افضل کے معنی یہ سمجھنا کہ عند اللہ میرا مقام اور رتبہ اس سے بڑا ہوا ہے. فرمایا اس کا فیصلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ آگے میں شرح کر رہا ہوں اپنے بزرگوں ہی کی صحبت کی اور جوتیوں کی برکت سے. اکمل سمجھنا تو جائز ہے بھائی، اکمل نہیں سمجھے گا اگر کوئی شخص، ایک مفتی اگر یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اللہ کے قانون کا علم رکھتا ہوں اور یہ نہیں رکھتا، تو آخر جب کوئی اس سے پوچھنے کے لیے آئے گا تو اس کو فتویٰ کیوں کر لکھ کے دے گا؟ ارے بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. نہیں سمجھ رہے بات. پہلے تو میں ادھر سے چلوں اکمل کے تعلق سے، پھر آؤں گا ذرا اس میں تشریح زیادہ ہے افضل میں، ان حضرات کی جوتیوں کی برکت سے، کتابوں کی برکت سے نہیں کہہ رہا. لوگ سمجھتے ہیں کتابوں سے علم آ جاتا ہے. ہاں یہ دیوبند کے فضلا بیٹھے ہیں. ہاں جی جو بھی سوچیں کہیں، میں سب گھاٹیاں پار کر کے بابا یہاں تک آیا ہوں، 55 سال کی میری عمر ہے، ایسے ہی تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. اور کیا کہوں؟ اب سنیے، جو ادھر سے ادھر کو چلوں گا ذرا، ایک حضرت محمد ابن نہیں قاسم ابن محمد ابن ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں ان کا بھی حلقہ درس لگتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے، بڑے عالم، علماء مدینہ میں سے. اور حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، وہی بڑے علماء میں سے، ان کا بھی حلقہ درس مسجد نبوی میں لگتا تھا. ایک آنے والے آئے حضرت سالم کے حلقہ درس میں پہنچے، کیسی کیسی سوجتی ہے جو پہلے سے چل رہا ہے. ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت علم میں آپ بڑے ہوئے ہیں، آپ بڑے عالم ہیں یا حضرت قاسم؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ انہوں نے توجہ نہیں دی، اسے کہیں ٹلا دیا، نظر انداز کر دیا. سائل نے دوبارہ پھر پوچھا، انہوں نے کہا کہ انہی سے پوچھ لیجیے. حضرت قاضی اطہر مبارک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے خیر القرون کی درسگاہ ہے، میں تو ہلا رہے، پڑھی بھی ساری کتاب، چلو خیر پتہ ہے پڑھ بھی لیجیے. ہاں اس میں لکھا ہے واقعہ، تو انہوں نے کہا انہی سے پوچھ لیجیے. کیوں؟ کہتے تھے میں کیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا بھائی، تو بہت بڑے عالم ہیں کر کے بتا رہا تمہیں. لوگ اسے تواضع سمجھتے ہیں، تواضع کی تعریف نہیں کر سکتے، تواضع کی حقیقت نہیں جانتے. خودداری کہتے ہیں، خودداروں کی حقیقت بھی نہیں جانتے. تکبر کہتے ہیں، تکبر کی حقیقت بھی نہیں جانتے. یہ نہیں ہے تواضع. ورنہ تو ہم اور آپ سے زیادہ حضرت سالم اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ تواضع کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یوں کہتے تھے ان کے مقابلے میں. ایک تو یوں کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ارے بھائی کچھ تو ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوں. مارو زور سے ایک دھپ اس کے سر پر، ہاں وہ سوپستا ہی ہے، انا دیا اندیا لاد دیا. ہاں انہیں سے پوچھ لیجیے بات کیا ہے. बात यह है, ओह उल्टा हो गया मामला, मुझे ज़ुहूल हुआ, हजरत सालिम से नहीं पूछा, हजरत कासिम से पूछा, हजरत कासिम से पूछा। तो ये नहीं किया उन्होंने चीवी तवाज़ो जिसे लोग समझे, कहा उन्हीं से पूछ लीजिए। बात क्या थी? बात ये थी कि इल्म में हजरत कासिम हजरत सालिम से बड़े हुए थे, लेकिन अब अगर वो ये कहते हैं कि वो क्या है मेरे मुकाबले में, वो तो तिफले मकतब है, समझो मत भाई, अगर पहले मैंने कुछ कह दिया हो, हाँ तो जाहिर बात है कि ये मुरूवत के खिलाफ थी, ये बात तबीयत के खिलाफ थी और शराफत के खिलाफ थी, ये भी नहीं कहा। और अगर ये कहते कि मैं क्या भाई, उनको तो मुझसे कहीं बड़े हुए हैं, ये हकीकत के खिलाफ थी बात। जैसे दीवार को सोना और चांदी समझना हकीकत के खिलाफ, अल्लाह के दीन में गैर माकूल चीज का इंसान को मुकल्लब बनाया जाएगा, तो दीन फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये बिल्कुल फितरत और अक्ल के ऐन मुताबिक है दीन, कैसे मुकल्लब बनाया जाएगा इस बात का कि एक आदमी जाहिल के मुकाबले में ये समझे कि ये इसके पास कमालात ज्यादा हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हजरत ये कहना चाहते हैं कि कमालात में अपने को बड़ा हुआ समझना जायज है, जायज ही है बल्कि मुतय्यन है, वरना तो मियां दुनिया का निजाम भी कायम नहीं रह सकता, ये बंदा कह रहा है। अब कोई कहे कि जी जब कमालात में बढ़ा हुआ समझ सकता है जी, पता नहीं कोई एतराज तो नहीं करेगा, हालांकि चल नहीं सकती बात, जब कमालात में बढ़ा हुआ समझ सकता है तो आगे मुझे कहा नहीं जा रहा है, इसलिए कि शायद अगला मुकदमा तुम्हें भी तस्लीम ना हो। जब कमालात में एक शख्स बढ़ा हुआ है तो इंदल्ला उसका रुतबा और मकाम भी तो बढ़ा हुआ होगा, जब कमालात में बढ़ा हुआ है तो कुर्बे बारी ताला और महबूबियत बारी ताला भी तो बढ़ा हुआ होगा। अजी हजरत ये तो कमाल इल्मी की बात है, कमाल अमली में भी अगर बढ़ा हुआ हो तो भी ये नहीं कहा जा सकता, न समझा जा सकता, न ये बात तय है किसी भी तरह से नहीं, के लिहाजा फिर ये मुकर्रब भी है अल्लाह के यहाँ और ये महबूब भी होगा और इसे कुर्ब इलाही भी ज्यादा होगा। नहीं, क्या पता है, क्या पता है इस मियां साहब, क्या पता है इस अकमल शख्स में कोई ऐब ऐसा हो जो अल्लाह को नापसंद हो, और उसी एक ऐब की वजह से इसके सारे कमालात अल्लाह की नजर में हैज हों, राख हो, मिट्टी हो, उनकी कोई हकीकत ना हो। ये तो अगर कोई दीन में ये साबित कर दे कि नहीं अगर कमाल इल्मी है और कमाल इल्मी है तो ये बात तय है, नहीं कर सकता। अब उधर चलिए, एक शख्स वाकई ऐसे जाहिरी कमालात से आरी और खाली है, मगर क्या पता है उस मियाँ जी में, अल्लाह के उस बंदे में कोई ऐसी खूबी पाई जाती हो, कोई ऐसी अदा हो उसके अंदर जो मियाँ को पसंद हो, अल्लाह को पसंद हो, जिसकी वजह से कुछ ना होते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका मकाम उसके मुकाबले में ऊंचा हो। न काले पे मबनी, न गोरे पे मबनी, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। हजरत अकदस थान कुद्दुस रूहो ने अपनी एक किसी तकरीर में या तसनीफ में मलफूजात में इसे एक मिसाल से समझाया, फरमाया भाई एक लड़की है, औरत है, बड़ी हसीन जमील खूबसूरत ये और वो सारी चीजें हैं, लेकिन गंदा दहनी की बीमारी है, इसमें से कोई उससे निकाह करना नहीं चाहता, या निकाह हो गया मगर शोहर को पसंद नहीं, एक ही ऐब ने उसके सारे जमालात और कमालात पर पानी फेर दिया, ये इसकी मिसाल थी। और भाई ऐसा हो, ऐसे अजीब अजीब वाकयात हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये है असल वजह। न काले पे मबनी न गोरे पे मबनी, मियाँ जिसको चाहे सुहागन वही है। क्या पता है अल्लाह के कि मसलन किसी अल्लाह के बंदे में न इल्मी कमाल न अमली कमाल, मगर अपने आप में इस कदर नदामत और शर्मिंदगी और फनाइयत है, और अल्लाह अल्लाह के सामने ऐसा नाजिब शर्मिंदा रहता है कि अल्लाह को वही पसंद है। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, क्या बात थी बताओ, कितनी इबादत थी और सारी खाक में मिल गई सिर्फ एक कमी की वजह से, कि एक जगह हुक्म बारी ताला की तामील नहीं की। और अल्लाह तबारक व ताला को उजब और किब्र तो बहुत ही नापसंद है। और भाई इसका भी कोई एक बात, दूसरी बात यह है, मैं आगे चला गया और पहले से चलो, अरे भाई अभी तो ये हाल है जी, लेकिन इन्नमल अमालु बिल खवातीम, कुछ पता है अभी वहां तक जाते जाते दुनिया से जाने तक के जो मराहिल हैं उनको पार करते करते कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि इधर तो वैसा इनकलाब आ जाए इधर वैसा इनकलाब आ जाए, होता रहता है कि दीनी एतबार ही से तकरीर कर लो, दीनी एतबार से कमाल अमली के एतबार से तकवे के एतबार से इस वक्त वो सिफर है, और मैं अंग्रेजी नहीं बोलता सजा की वैसे कह दूं फिर वो सुपर हो जाए आगे बढ़ जाए, और ये जनाब जो सुपर हैं ये सिफर हो जाए। तिलकल मनोदा बिलवा बेनास, अगर इसका मासी कलहुल कलाम और है, ऐसा होता रहता है। और वैसे नहीं हदीस शरीफ में भी है, एक शख्स जन्नत वाले अमाल करता रहता है करता रहता है करता रहता है, यहां तक कि जब उसके और जन्नत के या मौत के दरमियान एक बालिश्त का फासला रह जाता है तो लिखा हुआ गालिब आता है, फिर वो जहन्नम वाले अमाल करता है और जहन्नम में जाता है। और इसके खिलाफ भी उसी में हदीस शरीफ में, एक शख्स जहन्नम वाले अमाल करता रहता है करता रहता है करता है, यहाँ तक कि जब जहन्नम के और उसके माबेन या मौत के उसके माबेन थोड़ा सा फासला रह जाता है, लिखा हुआ गालिब आता है, फिर वो जन्नत वाले अमाल करता है तो जन्नत में चला जाता है। इसका भी तो नहीं पता है, क्या भरोसा है कि अंजाम उसका क्या हो और हमारा क्या हो। इसलिए किसी को ये हक कैसे है कि वो ये फैसला कर ले, चाहे कितने ही कमालात का आदमी हो, कि इंदल्ला मकाम मेरा बढ़ा हुआ है, नहीं कर सकते फैसला, अल्लाह को ये चीज नापसंद है कि ये तो हमारा काम है, तुझे क्या पता हमारी नजर में किसका क्या मकाम है, तूने कैसे उसे नंबर दे दिए। और मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं अपने माहौल की, अपने मदारिस वालों के माहौल की। एक शख्स शेखुल हदीस है लेकिन उसका तर्ज व तरीक अहले इंतजाम के साथ कहो और मोहतिम के साथ कह लो, शूरा वालों के साथ कह लो, इस तरह का अखड़ किस्म का है और इस्तिबदाद व इस्तिकलाल का है कि सबकी नजर में नापसंदीदा है, हालांकि पढ़ा रहा है बुखारी शरीफ। और एक शख्स है जो दफ्तर में मुहर्रिर है और मुंतजिम, अहले इंतजाम शूरा या जो भी बड़े हजरात हो उनके साथ उसका ताल्लुक ऐसा इताअत व फरमा बरदारी का है कि वो उसके मुकाबले में वो पसंद है, उसका मकाम अहले इंतजाम के यहाँ और मोहतिम के यहाँ ज्यादा कुर्ब का है बमुकाबले उस शेखुल हदीस के। हजरत अक़दस क़ारी सैयद सिद्दीक साहब बानवी नवर अल्लाह मरकज़ू फरमाया करते थे, मियाँ अजब नहीं के बाद नूरानी और बगदादी कायदा पढ़ाने वाले बुखारी शरीफ पढ़ाने वालों से बढ़ जाए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सूरत अमल नहीं देखी जाती, हकीकत अमल देखी जाती है। एक शख्स नूरानी कायदा और बगदादी कायदा पढ़ा रहा है सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनूदी के लिए, तो उसका वो अमल जिंदा है, उसमें रूह और जान है, अल्लाह को बहुत पसंद है, कबूल है। और भाई एक शख्स बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रहा है और खुदा न खास्ता उसके अंदर इखलास नहीं है, इखलास नहीं है तो वो तो बेजान लाशा, क्या लाशा, बेजान है, रूह नहीं है उसमें, उसमें कोई कुव्वत और ताकत नहीं है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिमरिइन मा नवा, तो मुसलमात में से है। इसलिए हो सकता है कि बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला पीछे रह जाए, अल्लाह को पसंद नहीं उसकी बुखारी शरीफ, उसकी कोई मुस्लिम शरीफ या उसकी कोई हदीस शरीफ की किताब या इसके अलावा और बड़े से बड़ा काम, और वो छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं लोग इखलास के साथ कर रहे हैं, हो सकता है वो बढ़ जाए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये वजह है कि किसी हाल में किसी बंदे बशर के लिए अपने को अफजल समझना जायज नहीं। अफजल का ताल्लुक है इंदल्लाह और अकमल जाहिरी कमालात। और अगर इंसान को इसका मुकल्लब बनाया जाए कि वो अपने अंदर उन कमालात का भी इजान व एतकाद न रखे, तो अल्लाह की नेमतों का अगर इदराक भी नहीं होगा तो उधर मुकल्लब बनाया गया है अल्लाह काहे का शुक्र का, शुक्र कैसे करेगा वो, कल्ब और दिल शुक्र में डूबा डूबा कैसे रहेगा अगर ये अहले कमाल ये समझेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं और ये जो अजहल है ये तो बहुत कुछ है, तो किस चीज का शुक्र अदा करेगा। नहीं समझ में आती बात है। बात क्या है, तीन बातें हैं। इसकी तो किसी हाल में गुंजाइश नहीं कि कोई शख्स अमल के तकवे के किसी भी ऊंचे से ऊंचे मकाम पर रहते हुए ये समझे कि मेरा मकाम ऊंचा है, मैं मुकर्रब हूं अल्लाह ताला का, इनकी तो कोई हकीकत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई अल्लाह ताला ने इल्मी कोई खूबी दी, अमली कोई खूबी दी, किसी भी नौ की कोई हुनर दिया, कोई सलाहियत दी, कोई कुव्वत दी, ज़कावत की, ज़हानत की, हाफ़ज़े की, फहम की, इसकी उसकी, उसका इदराक हो, उसका एहसास हो, उसका इज़ान हो, मगर इसके साथ साथ के उसे अतीय बारी ताला समझे, अपना कोई इस्तेहकाक न समझे। और इसलिए जब ये समझेगा तो फिर दूसरे को हकीर भी नहीं समझेगा, डरता रहेगा कहीं ऐसा ना हो छिन जाए, ये मेरी नहीं है गाड़ी, ये तो फलां की है, जब चाहेगा चाबी ले लेगा, तो मुझे इतराने की क्या जरूरत है। ये तो फिर क्या होगा, जब ये समझेगा तो फिर शुक्र की भी तौफीक होगी। तो इस तरह से जमा हो जाएगा तमाम चीजों में। इसका नहीं मुकल्लब बनाया गया है कि कोई आलिम यूं समझे कि मैं आलिम ही नहीं हूं, वाह सुभान अल्लाह इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की, तो शुक्र कैसे अदा करेगा भाई। आज आज आजकल अजीब तबीयतों में रसूम का कितना गलबा, ये तो उम्मत का हकीम और मिल्लत का मुजद्दिद 100 साल पहले 80 साल पहले फरमाया करते थे, आज देख लो भाई आप हाफिज हैं, तो नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं हूं। लीजिए अल्लाह हिफ्ज कुरान की नेमत अल्लाह की तरफ से मिली, उसका इनकार कर दिया, यूं समझ रहे कि ये तवाज़ो है भाई, आप कारी हैं, वादे कहते हैं, कहते तो हैं लोग है? और आगे जुमला पूरा करो, मगर हूं नहीं क्या तकल्लुफात भाई, भाई आप आलिम हैं, तो मैं तो उनवान बदल दिया, भाई आप मौलवी हैं, नहीं कुछ नहीं मैं तो कुछ नहीं, अरे भाई मैं इसलिए अब यूं नहीं पूछता, मैं कहता भाई आप फारिगो तहसील हैं, जरा हल्का लफ्ज करके पूछता हूं, तो फिर उसे बताते हुए जरा झिझक नहीं होती। मौलवी आलिम कहते हुए तो बेचारा वो झिझकता था, इनकारी कर देता था, मौलवी कहते हुए चीमी करता था, अब अलग अलग करता हूँ, भाई आप मौलवी हैं, हाफिज हैं या कारी हैं या मौलवी या कारी, वो तहसील है या सब कुछ है? बाबे माशाल्लाह कहते जी सब कुछ हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अच्छा, अगर वजीर आजम ने या किसी बादशाह ने रियाया के किसी आदमी के पास कोई तोहफा भेजा हो, उसे कुछ दिया हो जी, अब रियाया का कोई आदमी उसे पूछे, अरे भाई वजीर आजम ने या बादशाह साहब ने आपको कोई फला चीज भेजी है? नहीं, कुछ नहीं, कहाँ भेजी है। और बादशाह सुन रहा है किसी तरह से, मोबाइल पर बैठा हुआ है या कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, क्या गुजरेगी बादशाह पर? वजीर आजम सुन रहा है, हमारे तोहफे का इनकार कर रहा है, मुनकिर है। अब जरा मंजर जमाओ के बंदों को अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, मोती जाते बारी ताला हैं, तो क्या चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला कि मेरी नेमतों का बंदा इकरार करे, इजहान करे, एतराफ रखे, इदराक करे, शुक्र अदा करे। अब वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं। भाई हाफिज हो कि नहीं, कारी हो कि नहीं, क्या नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई इसे माना के साथ कहो, पर मेरी कोई खूबी नहीं है, हाँ अल्लाह ने दी है, अतिया है जाते बारी दाना का। तो इस तरह से तवाजो और शुक्र दोनों जमा हो जाएंगे, नहीं समझे? और उज्ब और फख्र से हिफाजत भी रहेगी। आखिर तवाजो भी मतलूब है और शुक्र भी मतलूब है। अगर आप किसी नेमत का इनकार कर देंगे अल्लाह के बंदो, तो फिर शुक्र कैसे अदा करोगे बताइए? नहीं, वो तो हम उनके सामने इनकार करते हैं, वैसे तो हम समझते हैं कि हम जैसा कोई नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते भी हैं बातें, वो वैसे ही तो कह रहा था मैं, वरना वो मेरे सामने क्या जाने, वो तो तिफले मकतब है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ओ, तकबुर पर बात याद आई, तकबुर बड़ा ही खतरनाक। एक तरफ कहते तहदीस है नेमत, और तहदीस है नेमत को भी लोग नहीं जानते, बाजे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मुबतला होते हैं किब्र में, कहते हैं तहदीस है नेमत के तौर पर कह रहा हूं। अरे लफ्ज है तहदीस है नेमत के हजरत, तू किब्र में मुबतला है। अपने जो अहले हकीकत हैं उनके सामने अपने अहवाल रख, तो वो तशखीस कर देंगे, वो बताएंगे कि तेरे अंदर किब्र है। उम्मत के हकीम और मिल्लत के मुजद्दिद ने एक अहले इल्म में किब्र की तशखीस की थी, मगर मौलवी कहाँ माने किसी की। हाँ, नहीं माने, कोई बात नहीं माने तो हजरत की जूती से। अरे भाई, अगर मुआलिज किसी में किसी बीमारी की तशखीस करे और मरीज न माने, जाए नुकसान किसका होगा? अगर वाकई मरज हुआ और है, चूंकि बड़ा माहिर हकीम तशखीस करता है और ये मानता नहीं, तो जब तक नहीं मानेगा, इलाज नहीं कराएगा, तो बीमारी इसी की पड़ेगी ना, जरूर नुकसान तो इसी का है। 5 साल या 10 साल, गालिबन 5 साल के बाद उन्हें एहसास हुआ, फिर लिखा हजरत को। हजरत ने लिखा, बंदे खुदा, अगर उसी वक्त मान लेता तो अब तक तो कहीं का कहीं पहुंच जाता। जैसे वो मुआलिज जो डॉक्टर कहे, बंदे खुदा, अगर तू उसी वक्त मान लेता कि तू शुगर में मुबतला है, तो अब तक तो तू कहीं का कहीं पहुंच जाता कि तू शुगर में मुबतला हो जाता, यानी सेहतमंद हो जाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। और उम्मत के हकीम और मिल्लत के मुजद्दिद के मुताल्लिक तो बाज़ अहले इल्म ने अजीब बात फरमाई है, फरमाया कि मकाइदे नफ्स पर ऐसी नजर बहुत से मुतकद्दिम मशाइख की भी नहीं थी। हजरत ऐसी नब्ज पर उंगली रखते थे, कैदे नफ्स ऐसा पकड़ते थे कि वाकई हैरत होती है। एक بڑے اہل علم ایک دوسرے سلسلے کے بزرگ کے مجاز اور خلیفہ حضرت اقدس تھانوی قدسی روح کی شان میں کچھ بے ادبیاں گستاخیاں کی تھی، حضرت کو ناگواری ہوئی، تکلیف حضرت نے ظاہر فرمائی، لکھا تو انہوں نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ پھر غالباً خود ان بزرگ کو پتا چلا جن کے وہ مجاز و خلیفہ تھے، تو انہوں نے انہیں کہا، ان کے بتانے اور کہنے سے مان لیا، اور پھر حضرت تھانوی قدس روح کو خط لکھا۔ جناب وہ خط ایسا نیاز مندی کے لب و لہجے میں لکھا ہوا ہے، کبھی کبھی میں افتا والوں کو سنواتا ہوں، کہیں کسی مناسبت سے کسی سیاق و سباق میں جب کوئی بات آ جاتی ہے تو سنواتا ہوں۔ پچھلے سال نہیں موقع رہا، پتہ نہیں اس سے پہلے سال بھی شاید موقع نہیں رہا، جب موقع ہوتا ہے میں نے کہا دیکھو امت کے حکیم اور ملت کے مجدد کی مقاعد نفس پر گرفت، اور کوئی شخص اگر پڑھے گا تو گرویدہ ہو جائے گا اس شخص کی تواضع کا، نیاز مندی کا، عاجزی انکساری کا۔ اور حضرت اقدس تھانوی قدس روح نے ان صاحب کے تین قید پکڑے نفس کے، تین قید، یہ جو آپ یہ لکھ رہے ہیں یہ ادعا ہے، دعویٰ، یہ جو آپ نے یہ لکھا یہ تعصب اور تحزب ہے، اور یہ جو آپ نے یہ لکھا یہ شاید عجب اور خود پسندی ہے۔ دیکھ لو کتنے گہرے معائب نفس و مقاعد نفس ہیں۔ وہ پورا خط ہے، تین صفحے کا خط ہے، بہت چور ایسے چور پٹوتے تھے، عجیب تھے۔ بہرحال تشریح تکبر کے تعلق سے، تکبر خودداری نہیں سمجھتے لوگ، خودداری یہ ہنس رہے ہیں مولوی عمار، سنے ہوئے ہیں واقعہ خودداری کا۔ میں جب دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو شروع میں تالے چہارم و پنجم ششم، تین سالوں کی تعلیم کے دوران افریقی منزل قدیم جدھر اب دارالاساتذہ بن گئے تھے، ہمارے حضرت مولانا راشد علی صاحب بھی پہلے ادھر رہے، مولانا نور عالم صاحب اوپر رہتے ہیں، ادھر نیچے کی طرف جہاں مولانا احمد صاحب رضا مجدہم رہتے تھے، ادھر ہی کو ہمارا کمرہ تھا، سب طلبا ہی رہتے تھے وہاں، تو جمعیت الطلبہ کا دور تھا اس وقت، اور گویا کے جمعیت الطلبہ کے ہاتھ میں زمام کار تھی، جو چاہتی تھی جمعیت وہ ہوتا تھا جمعیت الطلبہ، جو نہیں چاہتی تھی نہیں ہوتا تھا۔ عجیب تھا وہ زمانہ، بس کچھ نہ پوچھو، بس کھانا طلبہ کو بہت عمدہ ملتا تھا، جمعیت الطلبہ ٹھہری نا، گھروں میں بھی نہیں بنتا ایسا کھانا، وہ صدر تھا، وہ سیکریٹری تھا، وہ تھانے دار تھا، وہ ایس پی تھا، وہ ڈی ایس پی تھا، ایسے چلتے تھے تعلیمات میں، یوں جاتے تھے، نہیں ہوگا جلسہ، دارالعلوم کے دروازے بند ہو، تعلیمات بند ہو، فلاں بند۔ ان سے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی میں دارالعلوم کے سارے رنگ دیکھے ہوئے ہوں، یہ جو آئی کر آئے، ہاں تو جمعیت طلبہ کا دور تھا۔ یہ صاحب جن کا میں آپ لوگوں کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جمعیت الطلبہ کے سیکریٹری تھے، الامین العام کہتے ہوں شاید عربی زبان میں، عربی زیادہ نہیں جانتا اس لیے وہ سیکریٹری زیادہ بولتے ہیں، وہ کہہ دیا جیسے مولانا شاہد صاحب الامین العام۔ اور یہ مطبخ کے خاص نگراں ناظم طلبہ کے حیثیت سے، کھانا یوں بنے گا، وہ بنے گا، اب یہ بنے گا، وہ بنے گا، اور بیچاروں کی نمازیں بھی صحیح نہیں تھی، جو چاہا پڑھ لی، جو چاہا نہیں پڑھی، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، عجیب دور تھا۔ ان کا کمرہ افریقی منزل میں مغربی جانب تھا، بالکل اس کے سامنے مشرقی جانب میں میرا کمرہ تھا، میں چہارم پنجم میں تھا، عمر بھی تھوڑی تھی، 16 سال، داڑھی بھی ہلکی سی، بس 17 سال بڑھتا چلا گیا، اور جو دو اور ساتھی تھے وہ بڑی جماعت کے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، ان سے इन्हें मुनासिबत थी, तो कदीम तलबा थे, पहले से रहते आते थे। ये सिक्रेटरी साहब आते, अब मेरे पास अपना लोटा था, अपनी बाल्टी थी, सारी चीजें अपनी थी, तो मेरा लोटा ले जाते मगर लाके रखते नहीं थे, वहां रखते थे अपने कमरे में बिल्कुल उधर किनारे किनारे। मैं वहां से उठा के फिर लाता। मैं मामूली तालिब इल्म था, एक छोटी सी उम्र थी, छोटी जमात में, मुझे क्या समझते वो। आते कमरे में उनकी वजह से थे, जो दो उनके रूह रफीक थे। बाल्टी ले गए, गुसल किया, नहाए। उस वक्त तो गुसल खाने ऊपर ही थे, जरूरत खाने भी ऊपर थे, वैसे ही बने हुए थे खुले, जिधर हजरत मौलाना अहरार साहब रहे ऊपर की मंजिल में, तो बाद में बनी। बाल्टी भी ले जाके अपने कमरे में रख लेते। हालांकि जीना हमारे कमरे के पास से चढ़ता था ऊपर, ऐसा भी नहीं कि यहां से ले गए और फिर उनके उतरते हों तो करीब की वजह से। मैंने इनसे कहा, भाई वो लोटा ले जाते हैं तो ले जाने की तो कोई बात नहीं, मगर जरा लाके रख भी दिया करें यहाँ, आप कहें उनसे। वो बाल्टी ले जाते हैं कोई बात नहीं, इस्तेमाल कर ले, मगर जरा इतना तो कह दें यहाँ लाके रख दिया करें। तो इनमें से किसी साथी ने उनसे कहा तो फिर मुझे मुस्कुराते हुए हंसते हुए बताया कि बात हमने पहुंचा दी, कही थी उनसे, मगर वो साहब यूं कहते हैं कि ये मेरी खुददारी के खिलाफ है। अरफ तक कैफ है। अब उस वक्त मैं चारों का पंजुम का चारों का तालिब इल्म था, खुददारी में मुझे कुछ नहीं पता ये क्या चीज होती है खुददारी। खैर फिर कोशिश की लेकिन नहीं माने, करते रहे। जब आगे बढ़े और कुछ अल्लाह के फजल करम से अपने असातिज़ा बुजुर्गों की बरकत से हकायक शरिया कुछ समझ में आए, तो उनकी अक्ल का और इल्म का मातम करने किया। मैंने कहा बताइए, अगर खुद दार होते, खुद दार लफ्ज भी अपनी हकीकत कुछ ना कुछ बताता है। अगर कोई आदमी अल्लाह किसी को फहम दे, अपने में मस्त, तो दूसरे के ख्याल की कोई परवाह ना करे, वो मुतवाज़े होगा। जो ऐसा होगा उसमें तवाज़ु होगी, उसे आर शर्म आएगी नहीं। ये आर और शर्म के क्या माना कि अगर मैं लोटा रखने के लिए वहां जाऊंगा तो मुझे छोटा समझेंगे, तो तू अपने में मस्त कहा है, तू तो दूसरे के ख्याल का पस्त है, उसका गुलाम है। अगर ये खुददार होते तो पहली बात तो ये थी कि मेरे लोटे और बाल्टी के मोहताज ना होते, अपना लोटा बाल्टी ला के रखते, और नहीं तो इस्तेमाल कर जैसे करने के लिए उठाते हैं वहां से, तो फिर दूसरे के ख्याल का ख्याल न करते। खुददार, इसमें कौन सी जिल्लत की बात थी कि किसी की हमने चीज ली अगर तो वहीं ले जाके रख दी। तो हकीकत में किब्र में उतरा थे, मुझे हकीर समझते थे कि वो छोटा मामूली आदमी है, मैं तो बोला सिक्रेटरी हूँ जमीयतुल तलबा का, और मैं नाजिम हूँ मतबख का, फला हूँ, इंचार्ज कहते थे उस अंग्रेजी का लफ्ज है, हाँ फला हूँ और ये हूँ। तो हकीकत में बरअक्स नाम नहन जंगीरा काफूर, ये मुबतला थे उजब में और मुबतला थे किब्र में। उजब के बगैर किब्र नहीं पैदा होता, जैसे बेटा बाप के बगैर नहीं होता आदतन, उजब बाप है और किब्र उसका बेटा है, और गजब और गुस्सा तो पोता है पोता। ये सिलसिले ने सब सुना, हमारे हजरत वाला शाह हरदुई नवल्ला मरकदो सुनाया करते थे, कहा और भाई गजब साहब तो पोते साहब है। मकसद ये है कि उजब से किब्र पैदा होता है, और किब्र जब होगा अब जरा सा कोई बात मनशा के खिलाफ कर दे तो आदमी आस्तीन सोच लेगा, क्यों रक्षा वाले को हकीर समझता है और मार देगा उसे, ये किब्र से नशी है, क्यों मारा तुमने। अगर ऐसा ही मामला किसी शहजादे से या बड़े से पेश आता तब भी तुम ये मामला करते, पता भी नहीं चलता आदमी को कि मैं किब्र में मुबतला हूं, जैसे पता नहीं चलता मैं बीमारी में मुबतला हूं, जांच कराओ तो पता चलेगा। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। मैंने कहा बताइए, वो सिक्रेटरी साहब बेचारे, अब बाद में तो वो मेरे बड़े मोतकिद हुए और आज तक इस कदर मोतकिद हैं कि बराबर में नहीं बैठते, मेरे सामने आके बैठते हैं, आ जाते हैं कभी। मगर तुम्हें नहीं बताऊंगा, मौली अम्मार देख रहे हैं कि हमें कभी तुम सोचो कि बता दिया जाए कि ये हैं वो अलमीनुल आम लिजमियति तुल्लाब। ये हकाइक शरिया है, इनका फहम किसी की जूतियों की बरकत से मिलता है, किताबों से नहीं मिलता। हाँ, ये मौलवी दानिश रामपुरी, इन्हें कहा मैंने तुम्हारी दानिश अभी पूरी राम नहीं हुई, हो जाती तो मजा आ जाता। हाँ, इन्हें कोई असल में बताता ही नहीं कि मैं क्या कहूँ, किससे गिला, किसका गिला और शिकवा करूँ, जब कौन नहीं, इनमें तो सलाहियतें हैं सब में, मगर कोई बताता ही नहीं। अल्लामा से सुलेमान नदवी को जब पता चला, जब सारी उम्र गुजर गई, हजरत मौलाना अब्दुल बारी नदवी ने तो यूं लिखा था आखिर में, 15 साल रहे मौलाना थानवी कुद्दुस रूह की सोहबत में, तसलसल के साथ नहीं ताल्लुक रहा, काश के सारी जिंदगी हजरत के कदमों में बसर होती। किसने कहा? हजरत मौलाना, अब जानते भी हो अब्दुल बारी नदवी की शख्सियत का नाम है, नदवे के ये दो ही पूत सबूत हैं जिन्हें जिन पर नदवे को बजा तौर पर फख्र है, इन जैसा कोई नहीं, एक सैयद सुलेमान नदवी और दूसरे मौलाना अब्दुल बारी। अब्दुल बारी नदवी का हाल भी ऐसा था कि उस जमाने में फलसफे में इनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं था। अल्लामा शिबली नोमानी ने मौजिज़े का बाब इन्हीं से लिखवाया है, और हजरत अक़दस थानवी कुद्दुस सिर्रहू ने इनकी एक किताब पर मुकदमा तकरीज लिखते हुए लिखा था कि फलसफे ने मौलाना के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है, बहुत जबरदस्त आदमी है। और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, वो तो सब जानते ही हैं, उलूम शर्किया और गर्बिया की जुए शीर का फरहाद। अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि सिवाय अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के इस वक्त और कौन है जी। और मौलाना थानवी कुद्दुस सिर्रहू खुद उनके कमालात के मुतरिफ थे, उन्हें फाजिल कहते थे। ये कहा था कि इलाज का तो एक बहाना था मेरा कि मैं लखनऊ गया, असल तो एक शाहबाज को शिकार करना था। वो शाहबाज वही थे अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी। ये तो मैंने इनसे कह दिया, ये आए हैं आज बैठे हैं। बात असल क्या कह रहा था, अभी कहाँ तक पहुंचा था सिलसिला गुफ्तगू? हाँ, वो तो हो गया। मैं ये कह रहा था भाई, ये चीजें कुतुब से नहीं समझ में आती। अब यहाँ से जाने के बाद पहले तो मुजाकरा करेंगे सारे कि ये क्या कह रहे थे। कर लीजिए मुजाकरा, मुजाकरे से भी नहीं लोगी, ये कुतुब से आती है समझ में, कुतुब से। दिल्ली का कुतुब नहीं, कुतुब मीनार, दिल का कुतुब मीनार, दिल का कुतुब मीनार। पता नहीं तुम्हें हजरत गंगोही कुद्दुस सिर्रहू की वो बात किसी ने सुनाई या नहीं सुनाई कि जब सैयद उत्ताइफा हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की नवल्ला मक्कदो ने लिखा था और हजरत के खतूत आए, आजीज का कोई खत नहीं आया, हालात का इल्म नहीं हुआ, तो हजरत गंगोही ने क्या लिखा था? लिखा था कि हजरत वैसे तो बंदे का कोई हाल ही नहीं, हाँ हजरत की जूतियों की बरकत से। ये अल्फाज भी सुनाए कि नहीं सुनाए, या किसी ने बदल दिया ऐसा कि हजरत की सोहबत की बरकत से? अब नहीं कोई कहेगा जूतियों की बरकत से, कहेंगे हजरत की सोहबत की बरकत से। हाँ, ये जरा सा इसमें भरम रह जाता है ना अपना, अरे भाई जूती कैसे कह दे। हाँ, हजरत की जूतियों की बरकत से अपने अंदर तीन बातें पाता हूँ। कौन लिख रहा है? जो बाद में चल के फकीहुन नफ्स और कुतुबुल इरशाद बनने वाला है, मौलवी रशीद अहमद। शुरू की बात है बिल्कुल, ये बात तो 80 साल में भी आज अहले इल्म को हासिल नहीं होती। नंबर एक तशरी नहीं करूंगा, बस मतन मैं तो सुना रहा था वो जूतियों की तरकी। नंबर एक अफाल शरिया अफाल तबिया बन गए हैं, ये तो जुमला तो सुनाया होगा जरूर, ऐसी बात नहीं। नंबर दो नुसूस में कहीं तआरुज नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह क्या कमाल इल्म है। इस हदीस का ये महमिल है, इस हदीस का ये महमिल है। हजरत अइम्मा किराम और मुज्तहिदीन में तो इख्तिलाफ इसी बुनियाद पर है, और मादी हुजाम यकसा नजर आते हैं। कोई तारीफ कर ले तो नफ्स फूलता नहीं, और कोई बुराई कर ले तो नफ्स में इंकबाज नहीं पैदा होता। ये फनाइयत ओहो ये तो आखिर उम्र भी हासिल नहीं होती। और बाकी ऐसे नहीं कि हजरत ने यूं ही लिख दिया था, हो सकता है अब तो कोई नकल करे कि किसी के मुर्शिद और शेख का किसी को खत आ जाए तो यही लिख दे ताकि मुझे खिलाफत मिल जाए। हैं हाँ। वो एक 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 ऐसे ही आदमी है जाहिल से, तो एक साहब के ताल्लुक से कहें वो बड़ी हंसी की बात है। एक साहब ने तो सुन के वो इतने हंसे कि उन्हें तो बस कलीपत ने खराब कर दिया, कलीपत खिलाफत नहीं कहा कलीपत, ताकि खिलाफत मिल जाए इसलिए लिख रहा है। ऐसे ही पीर हो गए जिन्हें उनके कुलूब में जो झांक के भी नहीं दे सकते, ख्वाब लिख दो तो खिलाफत मिल जाए, मिठाई दे आओ तो खिलाफत मिल जाए। और ख्वाब क्या लिखते हैं, मैंने ख्वाब देखा है बकौल शख्स के, वो किताब में लिख लेते हैं, मुराद ये लेते हैं ताकि झूठ ना हो। और ये नहीं पता कि कलाम की मुराद का एतबार मुखातब के एतबार से होता है, वरना यूं तो कभी झूठ हो ही नहीं सकती कोई चीज। ऐसे थे हमारे हजरात। हजरत मौलाना थानवी कुद्दुसी रूह के इल्म पर सब सर धुनते हैं, उनके कमालात पर सब सर धुनते हैं। उनसे एक मर्तबा किसी पूछने वाले ने पूछा था, तू मुकम्मल अज कमाले कीस्ती, तू मुनव्वर अज कमाले अज जमाले कीस्ती। तो उस्ताद तो हजरत मौलाना याकूब नानोत्री कुद्दुसी रूह थे, मगर ये जमाल कल्बी और कमाल कल्बी तो वहां से नहीं आया था। जो वहां से आया था उसे हजरत वही मंसूब करते थे, भाई जिससे जो मिले उसे उसकी तरफ मंसूब करो, ये तो कहीं और से आया था, वही मंसूब करके लिखा। मन मुकम्मल अज कमाल हाजियम, मन मुनव्वर अज जमाल हाजियम। फारसी नहीं समझते, फारसी को जिन्हें पूछा आप किसके कमाल से ऐसे मुकम्मल और किसके जमाल से ऐसे मुनव्वर हुए, फरमाया मैं अपने हाजी के कमाल से मुकम्मल हुआ और अपने हाजी के जमाल से मुनव्वर हुआ। और कहीं एक जगह तो यूं फरमाया, खुदी जब तक रही उसको न पाया। अब ये खुदी ये हजरत इस्तेमाल फरमा रहे हैं, एक खुदी इकबाल की इस्तिलाह है, वो तो मारिफत के बारे में है, और वो तो मुस्तहसन है, मतलूब है और पसंदीदा है। और ये हजरत खुदी ये खुद राई और खुद रवि, अपने पर नजर आना आना, जिसके फना के बगैर आदमी कुछ नहीं बनता। अल इल्म अल हिजाब अल अकबर, मुराद इसकी है नहीं है के लिहाजा जहल में बदल दो इल्म को, उस पर नजर नहीं होनी चाहिए वरना तो वो पर्दा बना रहता है। तो ये खुदी उस माना में है, खुदी जब तक रही उसको न पाया, और जब उसको ढूंढ पाया खुद अदम थे। पता नहीं समझ में नहीं आती बात, आदमी हमारा ताइल्म की मिसाल देता हूं, उसके कुछ नंबर ज्यादा आ गए, ओ करा मैं तो बहुत काबिल हूँ, मैं तो ऐसा हूँ और वैसा हूँ, या मसलन कुछ थोड़ी मालूमात हो गई पढ़ते पढ़ाते का, मैं तो बड़ा अल्लामा हूँ। मैं कह देता हूँ तरबियत के लिए, भाई अगर कभी ऐसा ख्याल आए तो तारीख में और दूर क्यों जाओ, तुम्हारे जो उलमाए देवबंद हैं जरा उन्हीं के इल्म के हालात पढ़ लो। जो शम्सुल अइमा सरखसी को पढ़ेगा क्या, तो कोई किताब उनके पास नहीं थी, और एक कुएं नुमा क्या कैद और गड्ढे से उन्होंने ये पूरी मबसूत इमला करा दी। तो अपने आप को फिर कुछ समझेगा? फिर तो वाकई यही कहेगा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं। क्या समझ में आया? जो जाते बारी ताला के कमालात पर जिसकी नजर होगी और फिर अपने आप को देखेगा तो हैच नजर आएगा, हैच समझेगा अपने को। ये कह रहे हैं जब उसको ढूंढ पाया खुद आदम थे। तुम्हारी क्या हकीकत थी मियाँ, आह ये सब इमदाद के लुत्फो करम थे। मैं तो ये सुनाना चाह रहा था तुम्हें, कुतुब की तरफ नहीं मंसूब किया कहीं। और न अपने मुताले की तरफ मंसूब किया, हजरत गंगोई कुद्दूसी लोगों ने भी नहीं और हकीमुल उम्मत हजरत थानवी कुद्दूसी लोगों ने, किसी ने भी नहीं जो अहले कमाल है। तुम्हारी क्या हकीकत थी मियां, आह पता नहीं भाई आज तो कुछ बात ज्यादा हो गई, शायद तलब ज्यादा है लोगों में है। ताने गिरिय तिफल के जोशद लबन, ताना खंदद अब्र के बार क्या, ताना खंदद ताना बारद अब्र के खंदद चमन, हर कुजा पस्तीस आब आ जा रवत, हर कुजा दर्दे दवा आ जा रवत। ये तलब की बात है, तालिबीन आए, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाल दी। हमारे हजरत वाला शाह हरदो कुद्दुस फरमाया करते थे कभी कभी, भाई ए भाई अच्छा है मैं तो बैठा कुर्सी पर, मेरे जहन में कुछ नहीं था, आप हजरत की तलब के कदम आए तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल की खिड़की खोल दी। और फिर फरमाते भाई वो देखा भाई एयरपोर्ट वगैरह पर दरवाजा नहीं होता, बंद रहता है, जब चल के आते हैं लोग नहीं होते आजकल ऐसे दरवाजे, वो खुल जाता है, उसकी मिसाल भी देते। इसलिए ये आप हजरात की तलब की बरकत है। लफ्ज तकबुर तो वही का वही है, बस अब मैं आगे मतन पढ़ता हूँ। ये कुछ थोड़ा समझाने की कोशिश की, उजब किब्र खुददारी तवाजो तहदीस नेमत, तकबुर बड़ा ही खन्नास है। जब तक ये हमारे अंदर है उस वक्त तक हुकूक इल्म अदा नहीं हो सकते। लो कर लो क्या करो, जब तक तकब्बुर है हुकूक इल्म अदा नहीं हो सकते। अब हुकूक इल्म की क्या तशरीह करूं, अब वक्त ज्यादा हो गया। और ये सिर्फ इल्म हासिल करने से नहीं निकल सकता, इल्म से तो और बढ़ता है। इल्म तो सिफत कमाल है, अल्लाह की सिफत है, और अल किबरिया और रिदाई जाते बारी ताला का तो खासा है, अल्लाहु अकबर है। जैसे कि किसी को खारिश का नुस्खा याद हो तो महज याद होने से खारिश रफा नहीं हो सकती, दफा नहीं हो सकती, बल्कि उसका तरीका ये है कि नुस्खे के अज्जा जमा करो, उसका इस्तेमाल शुरू कर दो, मुजिल्लात से परहेज करो, और जब तक तभी मशवरा दे उस वक्त तक नुस्खे का इस्तेमाल करो और परहेज जारी रखो, जब तक तबीब नबज देख कर न कह दे कि अब खारिश का मादा जाहिल हो गया है, उस वक्त तक तदबीर को न छोड़ो। हजरत इरशाद फरमाते हैं, बड़े अफसोस जाहिर करते फरमाते हैं, हाय वो लोग कहाँ गए जिनको बावजूद कमाल के अपने नक्स के इकरार में जरा पसो पेश न था। कोई बात ऐसी पेश आ गई फौरन इकरार और एतराफ कर लेते थे, और अब वो जमाना आ गया कि नाकिसों को भी अपने नक्स के इकरार से आर है, बल्कि वो अपने कमाल के मुद्दई हैं, बल्कि वो बज़बान हाल, या कातिब की गलती है, वो जमाना लिख दिया, वो बज़बान हाल अपने लिए कमाल के मुद्दई हैं। ارشاد فرمایا، عبارت میں قافیہ وغیرہ بالقصد نہیں لانا چاہیے، اس سے معنی تابع الفاظ کے ہو جاتے ہیں، حالانکہ الفاظ کو معنی کا تابع رکھنا چاہیے، اگر بلا قصد کوئی قافیہ آ جائے دوسری بات ہے، تکلف نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں بتکلف سجا و قافیہ کی رعایت کرنے سے منع فرمایا ہے، بتکلف۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو ہم سب کے لیے مفید و نفع بخش بنائے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح میں معین و مددگار بنائے۔ سبحان اللہ والحمد لله۔ میرا دماغ بھی بند ہی ہو گیا، بس اور زیادہ ہو گیا۔